ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, बेहद का बाप है वो किस स्थान पर सिद्ध होता है, किस स्थान पर सिद्ध होता है? शांतिवन में। शांतिवन की सभा को जब देखते हैं, बाबा के चारों ओर के बच्चे यहां पर पहुंचते हैं तो सचमुच ही देखने से ही सिद्ध होता है कि बाबा बेहद का बाप है। हम कहते भी है कि मधुबन तो अपने प्यारे पिता का घर है, जहां एक पारिवारिक भावना आती है, परिवार का प्यार हमें महसूस होता है। और ज्ञान सरोवर जो है वो परम शिक्षक की यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़ाई के नए नए कोर्स चलते रहते हैं। और शांतिवन जो है वो सतगुरु का दरबार लगता है। विशाल परिवार से मिलना हो तो शांतिवन में ही आना पड़ता है। और ये भी वंडरफुल बात है कि सारे कल्प में एक ही बार संगम युग में जब शिव बाबा आते हैं तो ये परिवार एकत्रित होता है। लेकिन ये परिवार इतना विशाल है कि सभी भाई बहनों से मिलना तो संभव ही नहीं हो पाता है। कितने बाबा के बच्चे विश्व के कोने कोने में बाबा का कार्य कर रहे हैं। अब इतने 6 लाख से भी अधिक भाई बहने एक साथ तो पता नहीं कब मिलेंगे। इसलिए जितने भी भाई बहने पहुंचते हैं उनसे मिलने का लक्ष्य जरूर रहता है, क्योंकि एक ही बार तो मिलना है। और यही संगठन में हमें पढ़ाई के भी अलग अलग विषयों पर एक दो के चिंतन का हमें लाभ मिलता है। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ। मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है कि ज्ञान की जो सत्यता है और जो सर्वोच्चता है उसमें निश्चय बुद्धि, ये तो हम जानते हैं कि अनेक जन्मों की भक्ति के फल स्वरूप ये सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। आज की मुरली में ही बाबा ने बार बार ये बताया कि बच्चे कब से तुम पुकारते रहे हो, जो भी भक्ति करते हैं अंतर में एक ही खोज होती है कि आखिर सत्य क्या है। और वो परम सत्य कौन है उसकी प्राप्ति के लिए ही विविध पुरुषार्थ करते रहते हैं, चाहे कठिन व्रत तप करते हैं, त्याग करते हैं, कितने ना अपने घर बार छोड़ संन्यास लेते हैं, गुफाओं में पहाड़ों में चले जाते हैं केवल इसी एक प्यास के कारण कि आखिर उस सत्य को हम प्राप्त करें, परमात्मा दर्शन करें, जीवन के वो सारे राज हमें समझ में आ जाए, उसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि भक्ति में वो सत्य नहीं मिलता है। इतने धर्म हैं, इतने मनुष्य गुरु हैं, इतने मठ पंथ संप्रदाय हैं, और हरेक के चिंतन की अपनी अपनी बातें हैं, कितने शास्त्र हैं, जीवन के बाकी सारे काम छोड़कर केवल शास्त्र पढ़ने बैठ जाएं, तो भी जीवन पूरा हो जाए लेकिन शास्त्र पूरे नहीं होंगे। इतना तो विस्तार है, और उस विस्तार में सार तो बिल्कुल गुम ही हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सारा सूत मूंझ गया है। क्यों बाबा कहते हैं कि भक्ति में भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, अंधियारा है? क्योंकि इतनी विचारधाराएं होने पर भी बुद्धि में सत्य स्पष्ट नहीं है। आज आप देखेंगे कि योग के विषय पर अनेक लोग काम कर रहे हैं, अनेक आश्रमों में योग सिखाए जाते हैं, योग की लंबी लंबी विधि बताई जाती है, लेकिन मूल बात योग किससे लगाना है वहां कोई नहीं बता सकते हैं। यही कहते हैं, जिसमें मन लगे उसको याद कर, अपने अपने इष्ट को याद कर। तो जो बेसिक मूल सत्य बातें हैं, चाहे आत्मा के बारे में, चाहे परमात्मा के बारे में, किसी को भी सत्य का पता नहीं। इसलिए कठिन विधियां करते रहते हैं, क्रियाकांडों में समय जाता है, लेकिन मूल वस्तु योग लगता ही नहीं है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाकी सब शास्त्रों में तो व्यक्ति की महिमा है, जीवन की कहानियां हैं, केवल एक गीता शास्त्र है जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन वे भी गीता सुनाते हैं, योग तो कोई कराता ही नहीं है। जबकि आप सबने पढ़ा होगा कि गीता के हर अध्याय के नीचे ये लिखा है कि गीता योग शास्त्र है। लेकिन योग किससे लगाना है और योग लगाने वाला मैं कौन हूं, सारी गीता पढ़ने के बाद भी ये मूल दो बातें भी स्पष्ट नहीं होती। और इसलिए भक्ति में हम भटकते रहते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास क्यों भटकते हैं क्योंकि जब तक सत्य प्राप्त नहीं होता है आत्मा को संतुष्टता नहीं होती। उनको ये इच्छा, ये जिज्ञासा बनी ही रहेगी कि इधर जाएं, उधर जाएं, और आखिर हम जाने कि सत्य क्या है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है और ना हमें इधर उधर जाने की इच्छा होती है, क्योंकि जीवन के सारे ही सत्य हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में। आज ही बाबा ने कहा है कि जिनकी बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है वे कौन है? अंधे हैं। और जिनकी बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्पष्ट है वे सजे हैं, मींस आंखों की रोशनी वाले हैं। क्यों बाबा कहते हैं कि बाबा की माला का लास्ट नंबर का मणका भी या बाबा के बच्चों में एक अनपढ़ गांव के बच्चे भी विश्व के बड़े से बड़े विद्वान पंडित वैज्ञानिकों से भी महान है? क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में सत्य ज्ञान है। इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति ये है कि हमें स्वयं भगवान मिले हैं और भगवान का सत्य ज्ञान हमें मिला है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बाबा का इस सृष्टि पर आना और आकर हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देना ये सबसे बड़ी कृपा है। भक्ति में लोग कृपा मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ना कि कृपा करो, लेकिन बाबा का आना और आकर सत्य ज्ञान देना ये सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि आप सोचिए कि सत्य ज्ञान ना होने के कारण आज सारा विश्व भटक रहा है, ना उन्हें जीवन का सही लक्ष्य पता है, ना जीवन जीने का सही मार्ग बुद्धि में है, बेचारे भटक रहे हैं। तो हमें ज्ञान की एक एक बात को इतनी गहराई से हमें समझना चाहिए जो हमारी बुद्धि कोई मनुष्य मत के ज्ञान से कभी प्रभावित ना हो। बाबा कहते हैं कि अगर इतना ही निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो भटकना समाप्त हो जाएगा। कोई प्रश्न बुद्धि में रहेंगे नहीं। जब भगवान पढ़ाते हैं ये निश्चय हो जाएगा तो ज्ञान की सारी ही बातें बुद्धि को स्वीकार हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले बाप का परिचय दो। जब वो सत्य बुद्धि में बैठ जाता है फिर गुरुओं की जंजीरों से और भक्ति के बंधन से हम मुक्त हो जाते। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कई बाबा के बच्चे नए नए होते हैं, ज्ञान में पूरा निश्चय नहीं होता है। रोज क्लास में भी आएंगे, शिव बाबा की मुरली भी सुनेंगे और क्लास के बाद जाकर शिव के मंदिर में शिव पर लोटी भी चढ़ाएंगे। तो कई रोज ज्ञान भी सुनते हैं तो मंदिर में जाकर शिव जी पर लोटी भी रोज चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान की सत्यता बुद्धि में स्पष्ट नहीं। जब ज्ञान में निश्चय हो जाएगा कि यही सत्य है और भगवान उवाच्य है तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि किसी को ये नहीं कहो कि भक्ति छोड़ो, ज्ञान समझाओ। ज्ञान समझेंगे, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। इसलिए निश्चय बिगर भल हम रोज आते भी रहे सेंटर में, क्लास भी करते रहे, सेवा में भी मदद करे, लेकिन निश्चय नहीं है तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। बेशक हम दुआएं कमाएंगे, भाग्य बनाएंगे, लेकिन हमारी अपनी आत्मा की स्थिति में जो शक्ति भरनी चाहिए वो शक्ति, वो प्रगति नहीं होगी। क्योंकि निश्चय बिगर पुरुषार्थ करते हैं, आते हैं, जाते हैं तो मेहनत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आए। इसलिए हम जो भी ज्ञान मार्ग के राहिब हैं, हमारा पहला कार्य ये है कि बाबा के ज्ञान की हर बात को हम अच्छी तरह से समझ ले। जितना ज्ञान की गहराई और ज्ञान की विशालता बुद्धि में होगी इतना आत्मा स्वयं समझदार और शक्तिशाली बने। आप अनुभव करेंगे कि स्वयं में ज्ञान की स्पष्टता नहीं होती है तो हमें बार बार दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है। बार बार हमें दूसरों से पूछना पड़ेगा, लेकिन बाबा स्वयं ही हर बात समझाते हैं। वो बातें अगर मुरली के अध्ययन से हम स्वयं समझ जाते हैं तो ज्ञान समझने से सबसे पहली प्राप्ति ये होती है कि हमें सद्विवेक प्राप्त होता है, हमें वो दिव्य बुद्धि मिलती है, हमारी अपनी बुद्धि रोशन हो जाती है, हमारे अंदर से अज्ञान का अंधेरा दूर होने लगता है। और जब व्यक्ति का अपना सद्विवेक जाग जाता है तो उसे किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं अपने विवेक से अपने जीवन को चला सकेंगे। ज्ञान से प्राप्त जो दिव्य बुद्धि है उससे हम माया को परख सकेंगे। अगर ज्ञान ही नहीं है तो परखेंगे कैसे, और परखेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। पहली बात तो समझने की है ना। बाबा की मुरली में रोज आता है बाप बच्चों को समझा रहे हैं, आता है ना, केवल सुना नहीं रहे हैं, केवल कह नहीं रहे हैं। जैसे हम आपस में कई बार कहते हैं, देखो मैंने आपको कह दिया, बस एक बार कह दिया पूरा हो जाता है, लेकिन बाबा हमें समझा रहे हैं, इसलिए बार बार रोज रोज नई नई विधि से हमें समझाते हैं, क्योंकि बाबा का लक्ष्य है ज्ञान के हर राज को समझाना। तो हमारा भी ये लक्ष्य हो कि केवल हम सुने नहीं, चलो भाई अच्छा लगता है, संग अच्छा मिलता है, समय हमारा सफल होता है, केवल उस हिसाब से हम क्लास में नहीं जाएं, लेकिन हमारा ये मूल लक्ष्य हो कि बाबा जो समझाना चाहते हैं वो मुझे स्पष्ट रूप से समझना है। क्योंकि समझने के बाद ही पुरुषार्थ की गाड़ी आगे बढ़ेगी। जब समझेंगे तो अभ्यास में लाएंगे। समझ में ही स्पष्टता नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे, अभ्यास क्या हम करेंगे। इसलिए समझने के बाद अभ्यास और पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। जब ज्ञान के एक एक समझते हैं, अभ्यास में लाते हैं, तो गुणों की धारणा होती है। आप देखिए जीवन में दिव्य गुण भी ऐसे ही धारण नहीं होंगे। जब हम समझेंगे उसका महत्व, उसकी आवश्यकता, उससे प्राप्ति, समझते हैं तब गुणों का विकास होता है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूं कि जब हम छोटे होते हैं तो नादान होते हैं, इतनी समझदारी नहीं होती है, तो हम सारा ही समय चीजें अपने प्रति ही खर्च करते हैं, खुद ही खा पी के मौज करते हैं।
लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और समझते हैं कि मुझे अन्य को भी देना चाहिए, दूसरों को भी आवश्यक है, आखिर मैं परिवार में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, मुझे अन्य के लिए भी कुछ करना चाहिए, जब ये बात समझ में आती है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति केवल खुद खाता पीता भोगता नहीं है लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ हिस्सा देता है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस कैसे आई? जब हमने समझा। तो जो भी गुण हमें जीवन में धारण करने हैं वो भी जब हम ज्ञान की सत्यता, यथार्थता और सर्वोच्चता को जब समझते हैं तब हमारे में धारण होता है। इसलिए जो हमारा लक्ष्य है बनना, लक्ष्य तो यही है ना, बनना है, स्वरूप बनना है, तो उससे पहले ये सारा प्रोसेस है कि सुने, समझे, विवेक से रियलाइज करे, उसके बाद अभ्यास में आवे, तब जाके स्वरूप बनता है। इसलिए पुरुषार्थ भी तीव्र तब बनेगा जब हमारी बुद्धि में ज्ञान की स्पष्टता है। हमें ये निश्चय है कि स्वयं भगवान समझा रहे हैं। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं कि कौरवों के पक्ष में अनेक विद्वान पंडित आचार्य गुरु वगैरह थे ना, लेकिन इन विद्वान पंडितों का भी उद्धार परमात्मा आकर के करते हैं। ये जो महावाक्य गीता में लिखा है परित्राणाय साधुनाम, माना उनका भी, गुरुओं का भी उद्धार करने के लिए परमात्मा आते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? अगर गुरुओं के ज्ञान से ही आत्माओं का उद्धार होने वाला था तो परमात्मा आकर क्यों ज्ञान देते, है ना? इतने मनुष्य गुरुओं के होते हुए परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं और तब आत्माओं की गति और सदगति होती है, तो इससे सिद्ध है कि सत्य ज्ञान केवल सत्य पिता परमात्मा ही समझा सकते। और आज भी बाबा ने कहा कि शिव बाबा आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, इसलिए हम उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। तो रोज हमारी बुद्धि में पहले ये पाठ हम पक्का करें कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बस बाबा, शुरू में आप सबको पता हो, पुराने भाई बहनों को मालूम हो कि ज्ञान में आने वाले भाई बहनों से ये निश्चय पत्र लिखाया जाता था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा संगम युग में हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमें ये निश्चय है। और इसी सत्य ज्ञान से सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है और हमें 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होना है, ये निश्चय लिखाया जाता था। वो इसलिए लिखाया जाता था कि जब निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सेकंड में स्वाहा हो जाएंगे, बाबा पर वारी जाएंगे, बाबा पर कुर्बान जाएंगे। जो ज्ञान समझ आता है उसमें अपने आप परिवर्तन आ जाता है, उसे कहना भी नहीं पड़ता है। आज हमें अगर कोई धारणा में चलने में, कोई नियम मर्यादा को अपनाने में अगर मेहनत लगती है, इसका अर्थ ये है कि हम समझे ही नहीं है कि ये कौन कह रहा है और किस समय पर आकर कह रहा है। मैं इतने तक बताऊं कि अलबेलापन भी हमारे पुरुषार्थ में क्यों आता है, आलस्य हमारे पुरुषार्थ में क्यों आती है। अलबेलापन हमारे अंदर है, माना हमने ज्ञान के राजों को नहीं समझा है। जिसने ये समझा हो कि विश्व बदल रहा है और स्वयं भगवान आकर कह रहा है, ऐसे निश्चय वाला कभी भी अलबेला नहीं हो सकता है। वो अपने पुरुषार्थ में जरूर अटेंटिव रहेगा और उसके पुरुषार्थ की रफ्तार जरूर तीव्र होगी, क्योंकि उसे समय का सिग्नल भी पता है, परमात्मा के आदेश का भी ज्ञान है और लक्ष्य की ऊंचाई की भी स्पष्टता है। अगर ये तीन बातें आपकी बुद्धि में हैं कि मंजिल कितनी ऊंची है जहां पर हमें जाना है, समय कितना बाकी है और कौन हमें बार बार कह रहा है, अगर ये निश्चय हो तो हम अलबेले, ढीले, धीरे पुरुषार्थी हो ही नहीं सकते हैं। हम तो कई बार सोचते हैं, भक्ति में भी भक्त लोग अनुभव सुनाते हैं, आपने भी सुना होगा, कई कहते हैं मुझे स्वप्न में ये आया कि फलाने स्थान पर मेरी मूर्ति दबी हुई है, तुम वहां से निकालो और वहां मंदिर बनाओ। ऐसी बातें सुनते हैं, और वो व्यक्ति कितना साधारण होता है, गरीब होता है, लेकिन सिर्फ स्वप्न में उनको आया तो वो मेहनत करके सबके पास जाके सबका सहयोग लेके मंदिर बना कर रहता है। और यहां तो हमें रोज साक्षात बाबा आके रोज कहते, भाई उनको तो स्वप्न में आया, किसी गुरु ने कहा और उनके कहने पर वे इतना पुरुषार्थ करते। आज आप देखो, स्वाध्यायी परिवार वाले हैं, गायत्री परिवार वाले हैं, स्वामी नारायण वाले हैं, वे भी तो मेहनत करते हैं ना, गांव-गांव में जाके कितनी सेवा करते हैं। उनको कौन कहता है? उनके गुरु कहते हैं। और यहां हमें रोज कौन कहता है? स्वयं भगवान कहता है। अगर ये हम समझते हैं तो हम अपना समय वेस्ट करेंगे? सिवाय बाबा और सेवा के और कुछ हमारे जीवन में रहेगा ही नहीं। अगर अभी भी हमारा समय, शक्ति, धन, हमारा अटेंशन, आकर्षण और बातों में है, इससे स्पष्ट है कि हमारी बुद्धि में 100% ये बात बैठी ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें बाबा और मम्मा के मिसल ज्ञान स्वरूप बनने की आवश्यकता है। पढ़ाई हमारी पक्की होनी चाहिए। पढ़ाई पूरी समझ के हमें करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को क्या दिखाया है शास्त्रों में, ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते, चार वेद और 18 पुराण दिखाते हैं। ये क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्मा के पास सर्व शास्त्रों का सार था। मम्मा को भी हम क्या दिखाते हैं, ज्ञान सरस्वती, विद्या की देवी दिखाते हैं। तो हमारे बाबा और मम्मा जैसे नॉलेजफुल है, ऐसे हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मास्टर नॉलेजफुल होने चाहिए। इतना हमारी बुद्धि में ज्ञान, हमें कोई पूछे तो हमें ये ना कहना पड़े कि भाई हमारी बहन जी से पूछ। कई बार भाई बहने नियम में चलते हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप ये नियमों में क्यों चलते हैं, तो रहस्य समझा नहीं पाते हैं, तो यही कहेंगे कि हम है ना ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाते हैं ना, वहां के ये नियम है। पर वहां के नियम आपने क्यों पालन किए, ये तो बुद्धि में होना चाहिए ना। अगर हमारी बुद्धि में वो स्पष्ट होगा तो हमारी धारणा से हमें कोई चलित नहीं कर सकेगा। क्यों हमारे भाई बहने किसी के आग्रह करने पर कहीं खाना खा लेते हैं, किसी के आग्रह करने पर पिक्चर देखने चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खुद को ज्ञान स्पष्ट नहीं है कि हम ये नियम मर्यादा क्यों पालन कर रहे हैं। योगी जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है, इससे कितना फायदा है, और कौन हमें कह रहा है कि ये अंतिम जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो, ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। तो क्या हम इतना सहयोग नहीं दे सकते? तो स्वयं ज्ञानवान आत्मा बनने से ना हमारे निश्चय को कोई हिला सकता है, ना हमें कोई भ्रमित कर सकता है, ना हमारी धारणाओं को कोई तोड़ सकता है। इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए अगर हमें अपनी धारणाओं को भी ऊंचा बनाना है तो उससे पहले फाउंडेशन चाहिए, ज्ञान को हम समझे। बाबा पढ़ाते हैं लेकिन बाबा स्वयं भगवान है, ये हर घड़ी हमारी बुद्धि में पक्का। जो भी हमें मुरली में डायरेक्शंस मिलते हैं वो बाबा के तरफ से मिलते हैं। जो भी सत्य बातें हैं वो बाबा हमें समझाते हैं। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं, आपने ये गीत में भी सुना होगा जिसमें ये गाया हुआ है कि शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले, आलोक के परलोक के, इस दुनिया के उस पारलौकिक दुनिया के जो भी राज है वो बाबा खोलते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। इसलिए एक एक महावाक्य बाबा के ऐसे हैं जो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, ये परमात्मा ही कह सकता है। तो फिर आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, कई नए भाई बहने ऐसे कहते हैं कि बहन जी बाबा जो समझाते हैं ना ऐसा ही बिल्कुल फलाने गुरु जी है ना कथा में ऐसा ही समझाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने भेद समझाई नहीं है कि परमात्मा क्या समझाते हैं, मनुष्य गुरु क्या समझाते हैं। एक बात ये समझ ले कि परमात्मा आकर वो ज्ञान सुनाते हैं जो अब तक किसी मनुष्य ने नहीं सुनाया है, इसलिए तो वो आते हैं। अगर वही शास्त्रों की बातें, वही गुरुओं की कही हुई बातें ही सुनानी थी तो भगवान को आने की जरूरत क्या थी। परमात्मा आते हैं तो जरूर वे नई सत्य बातें सुनाएंगे जो किसी मनुष्य ने नहीं सुनाई। तब तो बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि जो कभी भी नहीं सुना है वो मैं तुमको सुना रहा, अब तक जो कुछ पढ़ा है वो भूल जाओ, अब मैं जो पढ़ाता हूँ वो बुद्धि में रखो। ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि ये ही पूर्ण सत्य और सर्वश्रेष्ठ बातें। और सचमुच आप अनुभव करेंगे कि ज्ञान की गहराई को, उनकी सत्यता को जितना हम समझते जाएंगे हमें अपने आप में ही खुशी होगी, अपने आप में ही हमें प्राप्ति होगी, अपने आप में ही हमें शक्ति लगेगी, फिर हम किसी पर आधारित नहीं रहेंगे। क्योंकि ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अभ्यास वो सद्विवेक हमें दे देता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि और यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेजों में जो आप पढ़ते हैं उससे आपकी बुद्धि डेवलप होती है, लेकिन यहाँ वो ज्ञान समझाया जाता है जिससे बुद्धि डिविनाइज होती है। हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण, दिव्यकरण होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ज्ञान है, समझ है। तो पढ़ाई में आपका यही लक्ष्य रहे कि आदि से लेकर जब से बाबा ने यज्ञ स्थापन किया है तब से लेकर आज तक बाबा ने जो जो बातें समझाई है वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो। इतना हम पढ़ाई करें, इतना हम मुरली का अध्ययन करें, क्योंकि मुरली ही वो सोर्स है जिससे बाबा की कही हुई सारी बातें हमें मुरली से मिलती। इसलिए केवल मुरली सुने नहीं लेकिन स्वयं पढ़ें और समझें भी। जब हम अपने विवेक से बाबा के महावाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें और स्पष्टता होती। जब हम अपने बड़ों के द्वारा सुनते हैं तो और स्पष्टता होती है। इसलिए सुने भी और व्यक्तिगत रूप से हम उसको पढ़े भी। हम अनुभव करेंगे कि बाबा की मुरली से हमें जीवन की उलझन के, प्रश्न के, समस्या के
हर जवाब मिल जाते। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब ऐसा दिव्य विवेक संगम युग में हम धारण करेंगे और उस सेंस के द्वारा हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो जरूर सतयुग में जो बाबा कहते हैं कि वहां कोई वजीर रखने की आवश्यकता नहीं है, राजा अपनी अकल से राज्य चलाएगा, ये आपको 100% निश्चय हो जाएगा कि बात सही है। अभी हम अपने जीवन को अपने विवेक से चला सकते हैं। हमारी बुद्धि में कोई उलझन, कोई मूंझ नहीं रहेगी, क्योंकि सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। आप ये देखना, जो अधूरी बातें हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होती, सत्य हमेशा सरल होता है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान की सत्य बातों को समझते जाएंगे, आपकी बुद्धि में स्पष्टता होती जाएगी। आप अनुभव कर सकेंगे, कितनी भी बड़ी बात आएंगी, लेकिन आप उलझ नहीं सकेंगे। ज्ञान का राज बुद्धि में होगा, आप कोई बात से दुखी नहीं हो पाएंगे, बल्कि नॉलेजफुल स्थिति से हमें ये अनुभव होता है कि सचमुच दुख जैसी कोई चीज नहीं। दुख की फीलिंग इसलिए आती है, उस समय बुद्धि से ज्ञान मिस होता है। आप सब ने 4 नवंबर की मुरली पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? 4 नवंबर इस सीजन की पहली अव्यक्त वाणी, उसमें बाबा ने क्या कहा है? नैनों में बाप कब समा सकते हैं, हमारे दिल में बाबा कब समा सकते हैं? क्या चाहिए? सच्ची दिल। और सच्ची दिल की निशानी क्या बताई? राजयुक्त चलन। राजयुक्त चलन माना क्या? ज्ञान के रहस्यों से युक्त चलन। जो ज्ञान स्वरूप बन के चलेगा, वो ना अपने आप में नाराज होगा, ना दूसरे को नाराज करेगा। दूसरे हमसे नाराज कब होते हैं? जब हम समझ पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। हम हर क्षण ज्ञान स्वरूप स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए हमसे भूलें हो जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंस है बाबा की हर बात को समझने के लिए। कई समझते हैं कि सभी बातें समझने की क्या आवश्यकता है, बस आएंगे, मैंने मुरली का सार पढ़ लिया, अरे भाई इससे क्या होगा? पढ़ाई तो ढंग से करनी होती है ना, हर बात समझनी होती है। इतने तक बाबा ने कहा है कि सारी बैरिस्टरी, इंजीनियरी, डॉक्टरी, सभी ज्ञान का सार ईश्वरीय ज्ञान है, मक्खन है। अगर ये ज्ञान हमने गहराई से समझा, हमें कभी अफसोस नहीं रहेगा जीवन में कि मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ी, मैं बीए बीकॉम नहीं हुई और समर्पण हो गई, मुझे और भी ये कुछ पढ़ना चाहिए, ये कभी आपको संकल्प नहीं आई। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सभी ज्ञान का मक्खन है, सार है। क्यों बाबा कहते हैं कि ज्ञान से सेंसिबल बनते हैं?
ये लक्ष्मी नारायण कितने सेंसिबल है जो विश्व पर राज्य करते। तो सेंसिबल बने कैसे? पढ़ाई से बने। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने पढ़ाई ही पढ़ाई। तो इस बात को हम सामान्य नहीं कर दे। मेरे कहने का भावार्थ ये है कि कई बार रोज मुरली सुननी है, रोज योग अभ्यास करना है, तो हम उसको साधारण कर देते। हम सोचते चलो ये तो रोज ही है ना, रोज है इसलिए हम उसको कॉमन बना देते। परंतु रियलिटी ये समझनी चाहिए कि रोज बाबा पढ़ाते हैं मीन्स इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है, तब तो रोज पढ़ने के लिए कहते हैं। जो बात इम्पोर्टेंट होती है उसको बार बार करनी होती। तो रोज रोज पढ़ना है मीन्स ये बड़ी वैल्यूएबल चीज है, कॉमन नहीं है। इसलिए बाबा हमें समझाते हैं तो हम भी बाबा की हर बात को समझे, और जब समझेंगे तो परिवर्तन सेकंड में हो जाएगा। क्यों बाबा कहते हैं कि सेकंड में निश्चय होता है? निश्चय किसको कहते हैं? मुझे निश्चय हुआ माना क्या? मुझे समझ में आ गया, जो समझ मिली उसमें मेरी दृढ़ता आ गई, उसको ही तो निश्चय कहते हैं ना। और निश्चय बुद्धि के लिए बाबा क्या कहते हैं? विजयंती, वो सफल होंगे ही, विजयी बनेंगे ही, वे अपनी वृत्तियों को बदल सकेंगे, संस्कारों को पर विजय पा सकेंगे, सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और ये साइंटिफिकली बाबा की बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्संग नहीं है, ये विद्यालय है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है। तो केवल भावना से हम नहीं चले, प्रथम विवेक से समझें, पूर्ण निश्चय करें और फिर पूरी भावना से चले। तीनों चीजें चाहिए। पहले विवेक से बाबा को समझे कि ये ही सत्य है, उसमें पूरा निश्चय, और फिर पूरी भावना के साथ स्वाहा हो जाए, फिदा हो जाए, बाबा पर समर्पित हो जाए। तो आप देखेंगे हम कभी भी बाबा की अवज्ञा करेंगे नहीं, क्योंकि हमने समझा है, निश्चय किया है और पूर्ण विश्वास के साथ हम कुर्बान जाते। ऑटोमेटिक आप कई प्रकार की अंधश्रद्धा, अज्ञान, समाज के गलत रस्म रिवाज, गलत मान्यताओं से छूट जाएंगे। नहीं तो कई बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलते हैं। पहले जो करते थे वही रस्म रिवाज करते रहते हैं, वही गलत मान्यताएं रखते रहते हैं, और कहेंगे क्या बहन जी दुनिया में रहते हैं तो वो भी करना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों वो करना पड़ता है? क्योंकि खुद को निश्चय नहीं है। जो सत्य ज्ञान को समझेगा वो अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाएगा, गलत रस्मों से मुक्त हो जाएगा, गलत मान्यताओं से निकल जाएगा। उसको कहते हैं जागृत, अवेयर आत्मा। तब हम कहेंगे कि बाबा ने आकर हमें जगाया और हम जगे। नहीं तो बाबा तो जगाता है लेकिन हम बार बार करवट बदल के सो जाते हैं, अब वही पुरानी मान्यताओं में चलते रहते। तो पूरा परिवर्तन तभी हम कर सकते हैं जब हर बात को अच्छी तरह से हम समझें और निश्चय करें कि ये सत्य है, सर्वोच्च है। और दो बातें आप समझ लें कि बाबा जो कुछ कहेगा, एक तो पहली बात सत्य ही कहेगा, है ना? वो इधर उधर की फालतू बेमतलब की बातें बाबा नहीं करेगा। बाबा ने कहा माना वो सत्य ही है। दूसरी बात, बाबा ने कहा माना वो जीवन में धारण करना पॉसिबल है इसलिए कहा। बाबा कहते ना, मैं ऐसी बातें कहूं और आप करो ही नहीं, मैं ऐसा कहूं ही क्यों? बाबा वही बातें हमें कहते हैं जो जीवन में धारण करना पॉसिबल है। कई बार हम सोचते हैं ना कि बाबा को क्या पता, हम गृहस्थी है ना, कितना मुश्किल है दुनिया में रह के धारण करना। तो ये हमने अपनी बुद्धि चलाई, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बाबा भी तो हमें देखकर कहते हैं ना। बाबा भी तो जानते हैं बच्चे कलयुग में हैं, दुनिया में हैं, अंतिम जन्म में हैं, तन और मन में शक्ति नहीं है, ये बाबा भी तो जानते हैं ना। फिर भी बाबा कहते हैं माना वो धारण करना पॉसिबल है इसलिए बाबा कहते। तो आप कोई भी धारणा में चलने के लिए कभी भी अपना तर्क नहीं चलाएंगे, बाबा के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। हमारी बुद्धि स्वीकार लेगी कि बाबा जो कहता है वो हमें अवश्य धारण करता है। इसलिए ऐसे पक्के और सच्चे बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हम बने जो हमें दुनिया की कोई शक्ति, रावण की कोई सेना हमें हिला न सके। ओम शांति।